તારીખ 10/8/1995 શ્રી મદ્રાજચંદ્ર પત્રાંક 449 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 149.
શ્રદ્ધાના બળે કેવળ જ્ઞાનની અનુભૂતિ થઈ શકતી હોય તો તે જ શ્રદ્ધાના બળે પરોક્ષ અને પ્રત્યક્ષનો ભેદ મિટાવવા જેવું સામાન્ય કામ ન થશે, કેમ ન થઈ શકે. આમાં પ્રત્યક્ષતાને ગૌણ કરવાનો આશય નથી. તે શ્રદ્ધાના બળે પરોક્ષ અને પ્રત્યક્ષનો ભેદ મિટાવવા જેવું પ્રશ્નમાં પરોક્ષ અને પ્રત્યક્ષ કયા વિષયમાં છે, કોને અનુલક્ષીને છે? સત્પુરુષને અનુલક્ષી. તે શ્રદ્ધાના બળે પરોક્ષ અને પ્રત્યક્ષનો ભેદ, સત્પુરુષ પરોક્ષ હોય અને સત્પુરુષ પ્રત્યક્ષ હોય, એનો ભેદ મિટાવવા જેવું સામાન્ય કામ. એટલે શું કે પરોક્ષ હોય તો પણ ચાલે એમ, પ્રશ્ન તો ખુદ હી ક્લિયર કરેંગે. જિસ શ્રદ્ધાંત કે બલ સે કેવલ જ્ઞાન કી અનુભૂતિ હો સકતી હૈ, તો વહી શ્રદ્ધાંત કે બલ સે સત્પુરુષ કા પ્રત્યક્ષ પરોક્ષ ઓર પ્રત્યક્ષ કા ભેદ મિટાને જૈસા સામાન્ય કામ કૈસે નહીં હો. इसमें प्रत्यक्षता को गौण करवा करने का आशय नहीं है तो फिर कौन सा आशय है? तो वो आशय नहीं है तो फिर आशय क्या है? परिणाम में कसाई की मंदता हो सकती है लेकिन स्वरूप स्थिरता नहीं हो सकती है.
परोक्षता की जो बात करी सत्पुरुष के विषय में, वर्तमान में वो मौजूद होकर अपने क्षेत्र से परोक्ष है कि वर्तमान में वो सत्पुरुष परोक्ष है, वो पहले स्पष्टीकरण.
मतलब क्षेत्र से परोक्ष,
मतलब क्षेत्र की दूरी के कारण परोक्षता है कि वास्तव में सहयोग ही नहीं है इसके कारण परोक्षता है?
सहयोग
ही नहीं है, मतलब वो विद्यमान ही नहीं है
सत्पुरुष, इसलिए परोक्षता है.
वो दोनों में से प्रश्न कौन से रिलेटेड है?
उस विषय में प्रश्न बात एक ही, इसलिए एक बात नहीं है कि जो विद्यमान है उसको तो हम कभी भी मिल सकते हैं, जो अविद्यमान है उसका तो मिलना संभव नहीं है. विद्यमान है तो उनको तो देर सबेर उनका मिलना होता है, तो अपना कोई भी तकलीफ हो तो दूर हो सकता है, लेकिन विद्यमान ही नहीं हो तो क्या करे. सत्संग किया था तब कहाँ तक आगे बढ़े थे ये बताओ.
एजेंडा का विषय ये कि वर्तमान में परोक्षता है कि प्रत्यक्षता है उस सत्संग की, उसका ये उत्तर निर्भर करेगा कि इसे क्या है.
उनके उनके ख्याल में वो बात है कि वर्तमान में क्षेत्र से परोक्ष हो या अविद्यमान हो उसमें कोई अंतर नहीं है, जबकि उसमें अंतर है. पहले तो प्रश्न में उतनी क्लैरिटी नहीं है. अच्छा, मेरा प्रश्न तो वो था कि जब उसमें प्रत्यक्ष सत्पुरुष को गौण करने का आशय नहीं है तो फिर आशय कौन सा है, वो भी एक जानने की बात है. इस पर उसका उत्तर निर्भर करता है.
लगता है कि मैं कहना है
प्रश्न आप कहाँ खड़े रहकर के पूछते हो उसी के अनुकूल उत्तर देना होगा। एक प्रश्न का अनेक उत्तर हो सकता है, पूछने वाला कहाँ खड़ा है उसी पर भी उसका उत्तर देना ये उचित रहेगा, समुचित रहेगा, वरना वो उत्तर उचित नहीं होगा। तो आशय कौन सा है वो बताइए, फिर उसका उत्तर उचित रूप से दिया जा सकता है। है क्लियर कुछ? तो 449 पत्र चलता है, उसमें दो पोस्टकार्ड के विषय में स्वाध्याय हो चुका है, आगे तीसरा पोस्टकार्ड जो है ज्ञानी पुरुष के समागम का अंतराय रहता हो, ये प्रत्यक्ष प्रोक्ष वाली बात यही है। ज्ञानी पुरुष के अंतराय का समागम रहता हो उस प्रसंग में मेरे क्षेत्र से दूरी होती हो, अविद्यमान है वो बात नहीं है, इधर है विद्यमान है फिर भी जो समागम है नहीं हो पा रहा है, ऐसा ही कोई ज्ञानी का उदय है या हमारा उदय है, ऐसे प्रसंग ऐसे ऐसे प्रसंग में
ज्ञानी का वैसा उदय रह रहा हो या हमारा वैसा उदय बच रहा हो, पर मुझे किस रूप मिलेगा इस बात को, क्या हमारा उदय ऐसा बच रहा है ऐसा समाधान करेगा?
समाधान करने की बात नहीं है, वस्तु स्थिति को स्वीकार करने की बात होती है।
जब भावना होती है वहाँ तो सिद्धांत गौण होता है।
सिद्धांत तो गौण हो ही जाएगा, लेकिन समागम नहीं बना वो तो नहीं बना।
ये तो अपनी भावना की कमजोरी है कि उदय का
भावना, भावना के स्थान में अलग अलग डिग्री की होती है, सबों की भावना की डिग्री तो एक सी नहीं होती है, और उदय होता है और पर्याप्त डिग्री से भावना होती है तो उदय पलटता भी है, लेकिन होता तो है और पलटता भी है, दोनों बात बनती है, कभी देर सवेर उदय पलटता है कभी तात्कालिक भी उदय पलटता है, दोनों बात बनती है। अब तो कहते हैं कि अंतराय रहा है इसकी बात चल रही है कि ज्ञानी पुरुष के समागम का अंतराय रहा हो, वैसे वैसे प्रसंग में बार बार यह ज्ञानी पुरुष की दशा, ज्ञानी पुरुष की चेष्टा और ज्ञानी पुरुष के वचन को निरखना, हिंदी में भी निरखना है, निरीक्षण करना, स्मरण करना और विचारना योग्य है, तो उत्तरता क्रम दिया है, निरखना संभारना और विचार करना योग्य है। क्या कहते हैं कि जब क्षेत्र से दूरी में हो हम, ऐसा बन सकता है चाहे कितनी भी भावना हो 24 घंटा में अंतराय भी नहीं पड़े ऐसा नहीं बनेगा, कुछ काल के लिए 5 घंटा के लिए आधा घंटा के लिए कभी न कभी क्षेत्र से दूरी हो ही जाएगी, भले ही साथ में रहते हो, ऐसे प्रसंग बार बार बनता रहेगा। और कितना भी ज्ञानी पुरुष के प्रति लगाव हो, भावना हो, तो भी 24 घंटे में बिल्कुल क्षेत्र से दूरी हो गई नहीं, ऐसा बनना असंभव है। और वही आयुष पर्यंत तो संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि दोनों के पूर्व कर्म के उदय तो आएंगे ही। चिताली में जैसे सिद्ध परमात्मा को उदय ही नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा। पूर्व कर्म के दोनों के उदय है, उस उदय के अनुसार क्षेत्र की दूरी तो हो सकती है। ऐसे प्रसंग में क्या करना, क्या होना चाहिए, क्या करना मतलब क्या होना चाहिए कि बार बार जो ज्ञानी पुरुष की दशा को निरीक्षण करना, निरीक्षण करना को विजुअलाइज करना को हो, क्योंकि यहाँ ज्ञानी प्रत्यक्ष नहीं है, जिसे ऑब्जर्व करें। अवलोकन जो है वो प्रत्यक्षता में होता है, जबकि निरीक्षण करना है तो उसको निदिध्यासन भी कहते हैं, और उसको विजुअलाइज करना, जैसे हम देख रहे हो, हमारे समक्ष हो और हमको दिखाई दे रहे हो, वैसे ही हमारे समक्ष नहीं हो तो भी ऐसे ही देखने का प्रयास करना। और
दशा किसे ज्ञानी पुरुष की दशा का निरीक्षण करना
चाहिए। इनकी जो अंतरंग दशा है और उस अंतरंग दशा के कारण से उनकी बाह्य दशा में भी जो रिफर्केशन आता है, ऐसी पूरी जो इनकी अंतर बाह्य दशा है उनका निरीक्षण करना, उसको विजुअलाइज करना, और जिसके प्रति बहुत बहुत प्रेम होता है उनका ऐसा होता ही है। जिसके प्रति बहुत प्रेम होता है उनकी अनुपस्थिति में वो कैसे बोले, कैसे हंसते हैं, कैसे बैठते हैं, उनकी कैसी आदतें हैं, ये सब बात विजुअलाइज होने लग जाती है। बहुत नेचुरल है और सबको ये सर्व सामान्य मनुष्य को सभी को अनुभव है इसका। ऐसे सत्पुरुष के विषय में भी होता है, अगर इसके प्रति विशेष प्रेम होता है तो ऐसा होता है। पहचान के बाद ये होगा, क्योंकि दशा तो कहाँ से आई, पहचानने में तो दशा आ गई है तब तो उसका विजुअलाइज होना होगा ना, तो पहचान ही नहीं हुई अंतरंग दशा पर तो उसके विजुअलाइजेशन कैसे होगा, हो ही नहीं सकेगा। इसलिए प्रश्न अंतरंग से आना चाहिए, सीधा ऊपर से आ जाए और फेंक दे, ये नहीं होना। इसमें क्या होगा कि प्रश्न ऊपर से आ जाता है हम रख देते हैं, समाधान आएगा ऊपर से मिलेगा, अंदर से समाधान नहीं होएगा, तो फिर से ये असमाधान खड़ा हो जाएगा। कभी न कभी कोई प्रश्न बार बार आता रहेगा, हम विस्मरण कर जाएंगे कि आगे ये प्रश्न पर कैसे चला है। जब अंतरंग से नेपथ्य में से असमाधान या प्रश्न शंका उठती है तो समाधान जो आता है वो अंतरंग तक पहुंचता है, और जब अंतरंग में से ये प्रश्न उठेगा तो बहुभाग तो अंतरंग में से ही उत्तर नेपथ्य में से ही मिल जाएगा। 100 में से 99 प्रश्न की ये हालत हो जाएगी, पूछना नहीं पड़ेगा, ऐसा बनता है। क्योंकि भीतर में आत्मा, हमारे आत्मा ही परम गुरु है, गुरु तो अपरम है, बाहर के गुरु तो अपरम है, कंपैरेटिवली ये बात है। वो अंदर से जवाब देता है और तो सही होता है।
उसका उत्तर तो
मालूम है। तो उसका स्पष्टीकरण उत्तर नहीं, क्योंकि उत्तर तो शंका का होता है, जब शंका ही नहीं है तो समाधान का सवाल पैदा नहीं होता है। लेकिन इसका स्पष्टीकरण 213 में है, संत गुरु और आत्मा में, संत आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। वो बात एक हेडिंग में आया है, संत मैंने गुरु, आत्मा मैंने अपने आत्मा और परमात्मा मैंने तीन अंतर, तीनों में कोई अंतर नहीं है, ऐसी दृष्टि होती है उनको इस विषय में असमाधान कभी आता नहीं है। हाँ तो है, 223 में सत्पुरुष और आत्मा में परमात्मा में अंतर है,
आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना ही
परमात्मा, 223 में वो भी है। तो मुमुक्षु को क्या होता है कि ज्ञानी पुरुष का समागम जब नहीं मिलता है, नहीं होता है, तब वो उसकी दशा को विरखता है, उसकी चेष्टा मनोवचन काया की जो चेष्टा है और अंतरंग स्वरूप प्रत्यय पुरुषार्थ की जो चेष्टा है उनको भी निरखता है, और इनके वचन जो है उनको भी निरखते हैं। ऐसा भी बैठता है कि दशा को तो निरखना, चेष्टा को स्मरण में लेना और वचन का विचार करना, ऐसा भी बैठता है बराबर, और तीनों को तीन पद में लेना, दशा को निरखना, स्मरण करना और विचार करना, दशा पर चेष्टा को निरखना, स्मरण करना और उस पर विचार करना, तीनों होता रहता है, तीनों प्रकार के परिणाम ये तीनों पद के विषय में होते रहते हैं।
तीनों
साथ
नहीं होते, कहने में क्रम पड़ता है, वास्तव में होते
तो निरखने में स्मरण हो ही जाता है, और विकल्प दशा, स्वविकल्प दशा तो है ही, तो विचार भी हो ही गया। पुनः यह समागम के अंतराय में प्रवृत्ति के प्रसंग में अत्यंत सावधानपना रखना चाहिए, कटे से हिंदी शू कर सावधानपना रखना उचित है,
रखना योग्य है।
ठीक है, पुनः समागम के अंतराय में, समागम का अंतराय कब हुआ कि प्रवृत्ति प्रसंग आ गया है, हमको कुछ उदय का प्रवृत्ति का प्रसंग आ गया और समागम का अंतराय हुआ उस वक्त प्रवृत्ति के प्रसंग में अत्यंत सावधान पड़ा, जैसे कि कोई परिवार का काम आ गया, तो कोई बहुत बीमार है, सीरियस है, जाना जरूरी है, तो जाने की प्रवृत्ति हुई, उस वक्त क्या करना, जाना तो पड़ेगा, चलेगा नहीं, ऐसी कोई परिस्थिति स्वीकार करके दृष्टांत लेते हैं, तो उस वक्त क्या करना, अत्यंत सावधान माने क्या, तो अपरत्व के कारण से ये प्रवृत्ति नहीं कर रहे हैं, एक उदय माथे आ पड़ा है और इसका निवारण अन्यथा हो सकता नहीं है, तो हमारा अपनत्व न हो जाए या अपनत्व बढ़ जाए नहीं, ऐसा लक्ष्य में रख करके, सावधानी में रख करके प्रवृत्ति में जाना चाहिए, प्रवृत्ति होनी चाहिए।
ये प्रश्न की ऐसी सावधानी कौन रख सकता है, अवस्था में आया हुआ जीव ऐसी सावधानी रख सकता है, अन्यथा किस प्रकार से प्रतिपक्ष का पोषण कर सकता है?
जब ज्ञानी पुरुष की आज्ञा है कि ऐसे प्रसंगों में सावधानी रखना, तो जो आज्ञा को शिरोधार्य करता है वो तो सावधानी रखेगा, और जो आज्ञा को गौण करेगा वो प्रतिबंध की पुष्टि करेगा, वो अपना तो की पुष्टि करेगा, वो तो अपनी अपनी योग्यता पर निर्भर है। आज्ञा तो स्पष्ट है,
दोनों में प्रथम जो उपाय बताया वो
श्रेष्ठ
है, ऐसे करके लिया है।
तो साधन की निवृत्ति, मैंने प्रसंग की निवृत्ति, प्रसंग की
वास्तव में जब पुरुषार्थ सिद्ध होता है तो क्या प्रथम की मुख्यता आती है?
आएगी नहीं।
और अगर प्रथम की मुख्यता आती है तो उतना पुरुषार्थ की कमी है, तो प्रतिबंध का पोषण नहीं होगा, वो वाली बात कहाँ है वहाँ?
वो तो है, योग्यता जब ऐसी है तो प्रतिबंध हो ही जाएगा।
तो वैसी योग्यता वाले चीज क्या करना चाहिए?
उसको तो प्रसंग की निवृत्ति कर देना चाहिए, प्रसंग से हट जाना चाहिए। जहाँ हमारा अपने तो बढ़ जाता हो, वहाँ हमारा पुरुषार्थ नहीं चलता हो, वहाँ उस प्रसंग की निवृत्ति करना चाहिए, उस प्रसंग से हटना चाहिए। पर हट करके, यहाँ से हट करके अपना जो पुरुषार्थ है अपनी योग्यता को बढ़ाना चाहिए, योग्यता में आगे बढ़ना चाहिए, तो फिर दोबारा वो प्रसंग आने से वो प्रसंग में भी हमारे परिणाम प्रतिबंध को प्रतिबंध में नहीं आ जाए।
ऐसा बोलता हूँ कि अगर हम निवृत्ति करेंगे प्रसंग की तो मेरे परिणाम और गिर जाएंगे, पहले ही ऐसा पूर्वाग्रह रख के वो प्रकार का डिसीजन ले तो वो किस भूमिका में खड़ा है?
वो अभिप्राय की भूल है, अभिप्राय में ऐसा नहीं होना चाहिए। अभिप्राय में ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रसंग के कारण मेरे परिणाम गिरते हैं, मेरे परिणाम मेरी योग्यता के कारण गिरते हैं, इसलिए मैं हटता हूँ। मैं प्रसंग को नहीं हटाता हूँ, मैं हटता हूँ मेरी योग्यता के कारण मैं हटता हूँ, ऐसा लेना चाहिए। अभिप्राय में अगर प्रसंग के कारण मेरे परिणाम गिरते हैं तो बात उल्टी हो गई। कोई प्रसंग किसी को कुछ कराता है ऐसा वस्तु स्वरूप में तो है ही नहीं, होता है अपनी योग्यता के कारण से जो भी कुछ होता है।
एक्चुअल में क्या होता है, मतलब एक वचन आए हैं उसके जब तक डेप्थ में हम नहीं जाते हैं तो वही वचन हमारे को प्रतिबंध का पोषण करने में भी निमित्त होते हैं।
देखो
हमारे अनुसार हम
शास्त्र का कोई वचन हो, ज्ञानी पुरुष का कोई वचन हो, शास्त्र का कोई सिद्धांत हो, अगर हम हमारे आत्मकल्याण के अनुलक्ष्य से उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो उसे नुकसान होने का भी, उसी से ही नुकसान होने का संभव है, क्योंकि फिर वो अन्यथा अदरवाइज लेने में आ जाएगा। तो सभी वचन जो है तो आत्मकल्याण को लक्ष्य में लेकर के ही कहा गया है। जब कहने वाले का हेतु या दृष्टिकोण हमारी समझ में नहीं होगा और हमारा दृष्टिकोण भी उसके दृष्टिकोण के साथ साथ नहीं चलेगा तो हो सकता है कि अन्यथा समझ हो जाएगी और इसका नुकसान भी आ पड़ेगा। इसलिए सत्संग की आवश्यकता विशेष रूप से स्वीकार करने में आई है। यही कारण है कि अकेले अकेले कोई पढ़ता है और पढ़ने वाले को पता नहीं होता कि यहाँ दृष्टिकोण कौन सा है, ना अपना दृष्टिकोण का ठिकाना है, ना कहने वाले का दृष्टिकोण ख्याल में रहता है, तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए सत्समागम है, इसकी आवश्यकता विशेष रूप से ज्ञानियों ने स्वीकार की है। अरे एक शब्द का अनेक अर्थ होता है और यही कारण से एक ही शब्द अनेक अर्थ में प्रयोग किया गया है। अब आप यहाँ कौन सा अर्थ करोगे?
हम कौन सा नहीं
करोगे? ये बात ज्ञानी पुरुष बिना या सत्संग बिना समझ में आती नहीं है।
पर यहाँ का मर्म क्या है वो निकालना,
वो भी मुश्किल है। जब अर्थ में गड़बड़ होगी तो मर्म का तो सवाल पैदा होता ही नहीं है। जब अर्थ का ही मेल नहीं खाता है तो यहाँ अगर क्या कहना चाहता है तो इसका मर्म पाना वो तो बहुत गहराई की बात हो जाती है। वो गहराई तो आएगी कहाँ से? पुनः उस समागम के अंतराय में प्रवृत्ति के प्रसंगों में अत्यंत सावधानी रखना योग्य है, क्योंकि एक तो समागम का बल नहीं है, उसी वक्त तो समागम का बल नहीं है लो हो गया। एक तो सत्संग का बल वहाँ नहीं है, निमित्त का आधार तो छूट गया, पर दूसरा अनादि अभ्यास है, ऐसी दूसरा अनादि अभ्यास है जिसका ऐसी सहजाकार प्रवृत्ति है, जो प्रवृत्ति है वो सहज हो गई है और उसका अभ्यास भी अनादि का है। हम आपको एक प्रश्न पूछें, मिथ्या की पर्याय जो होती है भाव मिथ्या तो दर्शन का परिणाम, उसकी आयु कितनी, स्थिति कितनी? एक समय की। प्रत्येक परिणाम की स्थिति तो एक समय की ही होती है, दूसरे समय में दूसरा परिणाम होता है, वही परिणाम भी नहीं रहता, वो तो व्यतीत हो जाता है। तो समय समय होकर के मिथ्यात्व भाव अनंत काल से चालू रहा। अब हम ये पूछते हैं कि आपने प्रति समय मिथ्यात्व भाव को टिकाने के लिए क्या प्रयत्न किया, रखने के लिए क्या प्रयत्न किया? कि सहजाकार प्रवृत्ति है ये, तो यहाँ जो शब्द लिया है अनादि इसका अभ्यास है, जिसके ऐसी सहजाकार को प्रवृत्ति है जिस कारण से जीव आवरण प्राप्त होता है और यही प्रवृत्ति से जीव को आवरण होता है, वो आच्छादित हो जाता है, अपनी शक्ति है वो आच्छादित हो जाती है, वो शक्ति को उजागर कर सकता नहीं है। घर का अभी देखो क्या क्या उदय आता है, घर का, ज्ञाति का, या दूसरा ऐसा काम कार्यों के कारण आने से उस उदासीन भाव से उसको प्रतिबंध रूप जान करके प्रवर्तन करना योग्य है। घर के काम आ जाएंगे या समाज का काम आ जाएगा, या शरीर के कारण से कोई प्रतिबंध तो सबका होता है, शरीर के कारण से कोई प्रवृत्ति करनी पड़े और सत्संग से दूर होना पड़े, ट्रीटमेंट लेने के कारण बीमारी हो गई, ट्रीटमेंट लेने के लिए कहीं जाना है तो सत्संग छोड़ करके जाना हुआ, अगर ऐसे ऐसे प्रसंग में या कोई घर का काम आ गया या कोई समाज का काम आ गया, ऐसे दूसरे दूसरे काम के कारण आ जाने से उदासीन भाव से, पहली तो बात है कि हमें रस लेना चाहिए नहीं, सबसे पहली बात वो है, हमारी ये सावधानी हो जानी चाहिए कि ये उदय आया और हम प्रवृत्ति में रस लेंगे ये बात जहर खाने की हो जाएगी, हमको पॉइजन खाना नहीं है। कभी किसी को पॉइजन की बोतल देख करके चखने का भी विचार आता है क्या? तो कभी खाया तो नहीं, कैसा होता होगा, थोड़ा चख तो ले, हैं? क्यों
अधूरी रखा है, समझाने के लिए
और कहीं भी
गड़बड़ होता है
और कहीं भी बोतल खाद्य पदार्थ के समीप भूल से भी रह गई तो उठा करके और जगह सुरक्षित जगह रख देगा दूर। बोतल को उठाई फिर खाने का समय हो गया, तीन दफे सब उसे हाथ धोएगा, एक दफे नहीं धोएगा।
क्यों? वैसे तो सामान्य हाथ धो लेते हैं लेकिन आज पॉइजन की बोतल को उठा कर रखी,
कहीं इसके कोई गंध मात्र भी रह जाए नहीं। इतनी सावधानी हम शरीर के विषय में लेते हैं, देहात्म बुद्धि होने से कितनी सावधानी आती है। पॉइजन का छोड़ो, केमिकल की फैक्ट्री में जाना हुआ, मालूम नहीं है किस केमिकल का कितना इफेक्ट होता है, हम वहां जाकर के घर पे खाना खाने को आए क्या करेंगे। रोज तो वैसे ही सादा पानी से हाथ धोएंगे लेकिन कहीं ऐसी जगह आए जाके आए तो साबुन से बराबर हाथ धोएंगे। देहात्म बुद्धि होने से हमारी पूरी सावधानी देह की सुरक्षा में रहती है। जो आत्मार्थी है उनको आत्मा की सुरक्षा की सावधानी हमेशा हमेशा रहती है। और उदय आठों कर्म का निरंतर होता है, संसार में संसारी जीवों को आठों कर्म का उदय निरंतर रहता है लेकिन बाह्य प्रवृत्ति जब जीव करता है तब उनका परिणाम कैसे होना चाहिए कि सावधानी से उदासीनता आ जानी चाहिए, रस निरस हो जाए। जैसे ऐसा हुआ कि हमको कहीं जीवन का निमंत्रण आया और हम कोई प्रसंग में पार्टी में खाना खाने को जाते हैं, अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ वानगी जो है उसकी पुरस्कारी होती है, उस वक्त हमारे परिणाम कैसे होते हैं। अगर सावधानी होगी तो चीज आती जाएगी, परिणाम निरस होता जाएगा। अगर सावधानी है तो, अगर सावधानी नहीं है चीज आती जाएगी परिणाम में रस बढ़ता जाएगा। प्रसंग तो जो है तो है, सावधानी कितनी है। ऐसे प्रसंग होने पर उदासीन भाव से प्रतिबंध रूप जान करके ये हमारे आत्मा को अगर सावधानी नहीं रखी तो प्रतिबंध का कारण बनेगा। प्रतिबंध तो हमारा परिणाम है, प्रतिबंध रूप तो हमारे परिणाम है लेकिन जिसके लिमिट से होते हैं उनको भी प्रतिबंध आरोप से कहने में आता है। सामने वाली चीज प्रतिबंध नहीं कराती कभी, ये गलती कभी नहीं करना, जिससे हमारा लगाव हो या रस हो हमें या जो बात हमको प्रतिबंधक हो रही है वो सामने चीज, सामने की चीज के कारण से नहीं है, ये हमारे कारण से। इसलिए हमें अपने आप को संभालना है, सबसे पहले वो काम करना है। ऐसे प्रतिबंध रूप जान करके प्रवर्तन करना योग्य है, उस कारणों को मुख्य करके किसी प्रवर्तन करना योग्य नहीं है तो प्रतिबंध में आ गया। अगर इसको मुख्यता दे दी, प्रतिबंधक कारणों को मैंने बाह्य पदार्थों को मुख्यता दे दी तो मुख्यता दिया वही हमारा प्रतिबंध हो चुका, उसको तो हमेशा हमेशा गौण करो। सबसे पहले समझ लो कि हमारा प्रतिबंधक विषय कौन कौन सा है, जिससे हम आवरण में आ जाते हैं, हमारे परिणाम गिर जाते हैं, क्या कारण है पहले ये समझ लो, फिर ऐसे प्रसंगों में सावधान हो जाओ। प्रसंग तो आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि प्रसंग नहीं आएगा, प्रसंग आएगा भी, लेकिन अंदर में सावधान हो जाओ। और उस प्रसंग की मुख्यता कभी नहीं देना, प्रसंग हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो, उसकी मुख्यता, व्यक्ति से भी प्रतिबंध होता है, प्रसंग से भी प्रतिबंध होता है, इसकी मुख्यता कभी देनी चाहिए नहीं। मुख्यता दिया उसी वक्त प्रतिबंध तो चालू हो ही गया। और ऐसा हुए बिना
मुख्यता दिया तो ये बात है ना, अगर वास्तव में उसके बाद का अनुमोदना वाला भाव भी आ गया, क्या ये बात ठीक है तो भी गया।
हाँ तो ठीक है, वो मुख्यता नहीं दिया क्या,
उसको नहीं लगता उसने मुख्यता दिया।
हाँ
हाँ, होता कि हाँ ये तो स्थिति ठीक है, ऐसा ही होगा, और वो इनडायरेक्टली मुख्यता दे
देता है। मुख्यता दे ही दिया,
डायरेक्टली नहीं दिया, इनडायरेक्टली दिया, और उसको उसको बांध नहीं पड़ रहा था तो भी
पड़ा। मुख्यता नहीं देना का मतलब मुख्यता करना नहीं, कराना नहीं, करने में अनुमोदन होना नहीं, मन से, वचन से और काया से, तीनों को मल्टीप्लाई करके 9 कोटि 9 प्रकार का में से एक भी प्रकार को रखना नहीं है, नाश कर देना है, 9 प्रकार का नाश करना है, ये बात है। क्योंकि इससे हमारी आत्मा का खून होता प्रतिबंध होता है, मतलब क्या खून होता है, हमारे जो प्राण है, ज्ञान और शांति, वो ज्ञान और सुख का इसमें खून होता है, अभाव होता है। परदया में तो हम लोग समझते हैं अच्छी तरह, इसलिए समझते हैं कि हमको भी वैसा प्रतिकूल प्रसंग नहीं चाहिए। जैसे कोई मांसाहारी लोग होते हैं, पशु पक्षी का मांस खाते हैं ना, किसी पक्षी को पकड़ लिया और उनका गर्दन है उसको मारने के लिए मरोड़ देता है, हाँ हम देख नहीं सकते। हाँ हमारे आर्यत्व के कारण जो आर्य पुरुष होते हैं तो ऐसी हिंसा को देख नहीं सकते, लेकिन हमारे प्रतिबंध को लेकर के हम हमारे आत्मा की गर्दन को मरोड़ करके खून करते हैं, वो बात हम कैसे बर्दाश्त करते हैं। दूसरे प्राणी का प्राण जाता है तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, पर हमारा प्राण को हम खुद ही उसकी गर्दन को, आत्मा के गर्दन को पकड़ करके खून कर देते हैं निर्दय हो करके, और प्रतिबंध में फंसते हैं, इसकी हमें हमारी आत्मा की दया ही नहीं। पात्रता कब आती है, अनंत जन्म मरण कर चुका है ऐसे आत्मा की करुणा जिसको आती है, वो जीव अधिकारी है, वही पात्र है, और ऐसे जीव को ही आगे जाकर के अपना काम करने का अवसर मिलता है, तभी इसका कार्य होगा। वो जीव यथार्थ पदार्थ को यथार्थ स्वरूप में समझकर पुरुषार्थ में जुड़ता है। 40 में वो बात आई कि नहीं आई, देखो इधर तो है, रात्रि के स्वाध्याय में लिया था ना सत्संग में रात्रि का। अनंत जन्म मरण कर चुका है ऐसे हमारे आत्मा की करुणा दया ऐसे अधिकारी को उत्पन्न होता है, जो अधिकारी जीव है पात्र है उसको उत्पन्न होता है, और वही वास्तव में मुक्त होने का जिज्ञासु अभिलाषी या भावना वाला कहा जा सकता है। अगर हमारे आत्मा की हमें दया नहीं है तो हम न पात्र है न हमको कर्म से मुक्त होने की भावना भी है। और जिसको ऐसी करुणा आती है, पात्रता आती है करुणा के साथ, वही पुरुष यथार्थ पदार्थ को यथार्थ स्वरूप में समझ करके मुक्त होने के पुरुषार्थ में जुड़ता है। पदार्थ भी यथार्थ तब उनको समझ में आता है और उसकी समझ में भी है वो यथार्थ है और उसका फल पुरुषार्थ है, और वो पुरुषार्थ प्रतिबंध को तोड़ करके मुक्त होने के दिशा में काम करता है। खाने में अभक्ति भाव का त्याग माने क्या?
खाने पीने में तो अभक्ष ग्रहण नहीं करता है, अभक्ष पदार्थों का ग्रहण नहीं करता है।
अभक्ष पदार्थ का
खाने में तो, परंतु अभक्ष भाव, परंतु अभक्ष भावों का ग्रहण करता है जो आत्मा का खून करते हैं। कहाँ का न्याय
है? अभक्ष पदार्थ को, पदार्थ तो देह की खुराक है, अभक्ष पदार्थ तो देह की खुराक है, पर भाव है वो आत्मा की खुराक है। तो आत्मा को तो अभक्ष खिलाता है और शरीर को अभक्ष नहीं खिलाएगा। फिर बड़ी गड़बड़
भाई, में इतना विवेक पर अंतर विवेक में एकदम जीरो।
अंतर विवेक में जीरो क्या? अंतर विवेक में माइनस माइनस बाह्य दृष्टि होती है वहां ऐसा होता है, अंतर्दृष्टि में फर्क पड़ जाता है। अंतर्दृष्टि में जीव अपने प्रतिबंध को तोड़ने का प्रयास के बिना रहेगा नहीं, और वो भी क्रम से मैंने व्यवस्थित रूप से सिस्टमैटिकली, ऐसे नहीं जैसे कैसे, ऐसे नहीं, पद्धति रूप से काम करता है। ऐसे प्रतिबंधक कारणों को मुख्य करके किसी भी प्रकार का प्रवर्तन करना नहीं चाहिए, और ऐसे हुए बिना प्रवृत्ति का अवकाश प्राप्त होता नहीं, यानी प्रवृत्ति से छूट भी सकता नहीं। ऐसे हुए बिना यानी रस लेकर के जो प्रवृत्ति करेगा उसको तो प्रवृत्ति ही प्रवृत्ति रह जाएगी, जो उदासीन भाव में आएगा उसको प्रवृत्ति से अवकाश लेना मैंने निवृत्ति होना उसको संभव है, और यही यथार्थ निवृत्ति है। प्रवृत्ति में रस रखें और बाहर में निवृत्ति लें तो भी उचित नहीं है, कि निवृत्ति निवृत्ति है ही नहीं वास्तव में, क्योंकि रस तो पड़ा है। हमको फलानी चीज खाने में अच्छी लगती है, और अच्छी लगती है क्योंकि हमारा अभिप्राय में वो चीज अच्छी ही है, फिर भी हमारे परिणाम बिगड़ते हैं तो अभिप्राय को बदले बिना अगर हम उस चीज का त्याग कर देते हैं हमारे परिणाम बिगड़ते हैं। छोड़ो इसको, त्याग करो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। रस को पहले मिटाओ, फिर त्याग करो। रस मिटाए बिना त्याग करना ठीक वही जाएगा, रस मिटेगा उसको त्याग हो गया, एक न्याय से तो हो ही गया, भाव से हो गया द्रव से हो ही जाएगा, भाव से हो गया तो द्रव से हो ही जाएगा। अब जो है जो मुमुक्षु तत्वज्ञान का अभ्यास करते हैं, क्या तत्वज्ञान का अभ्यास किया है और करते रहता है, उसको आत्मस्वरूप को विचार करने का होता है। तत्वज्ञान के अभ्यास में क्या होता है, आत्मा के स्वरूप का विचार होता है। वो विचार होने में भिन्न भिन्न प्रकार की कल्पना हो जाती है, वो बात करते हैं। क्यों, इसके क्या कारण है, आत्मा को भिन्न भिन्न प्रकार की कल्पना द्वारा विचारने में लोक संगना, ओक संगना और असत्संग यह कारण है। तीन कारण लिए हैं, सबसे बड़ा कारण, फिर इससे थोड़ा कमजोर कारण और इससे थोड़ा कमजोर कारण। या इस बात को एक दूसरे ढंग से भी ले सकते हैं कि तत्वज्ञान के अभ्यास के दौरान जैसा हमारा आत्मस्वरूप है वैसा हमको भाव भाषित नहीं हो रहा है, और बिना भाव भाषण हम आत्मा को ऐसा है वैसा है ध्रुव है अपरिणामी है ज्ञायक है परम पारिणामिक भाव है ऐसा हम निश्चित करते हैं, निर्णय कर लेते हैं। क्या तो उसमें कल्पना बन जाती है, भाव भाषण नहीं है तो अवश्य कल्पना बन जाती है। ऐसी कल्पना बनने का क्या कारण, तत्व ज्ञान का अभ्यास जो है वो तो भाव भाषण के लिए है, भाव भाषण नहीं हुआ और कल्पना हो गई। क्यों ऐसा होता है कि तीन कारण से ऐसा होता है। जिस जीव को लोक संगना है उनको कल्पना वो बनेगी, जिस जीव को ओक संगना है वो तो कल्पना में खड़ा ही है, और जिस जीव को असत्संग रहता है असत्संग की रुचि रहती है उसको बुद्धिमान होने पर भी कल्पना हो जाया करेगी, उसकी बुद्धि कल्पना में चढ़ जाएगी। ऐसा ही तीन कारण से बनता है कि जीव का यथार्थ निश्चय नहीं होकर के कुछ न कुछ कल्पना हो जाया करती है। अभ्यास तत्व ज्ञान का तो भाव भाषण कराने के हेतु से था, लेकिन ये गलती हो गई, ऐसा क्यों हुआ, इसके कारण के गहराई में गए हैं कृपालु देव, बहुत गहराई में गए हैं और ये बात को यहाँ प्रस्तुत किया है। उसमें पहला कारण है लोक संगना, जिसको लोक संगना रहती है वो आत्मस्वरूप का यथार्थ विचार कर सकेगा नहीं, इससे भी उसको यथार्थ होगा नहीं, ये नियम से बात है। अब लोक संगना माने क्या, लोगों की नजर में मेरा स्थान बना रहे, क्या लोगों की नजर में मेरा दिखाव बराबर रहे, कहीं भी कोई किसी की नजर में मेरा दिखाव गिरे गिर जाए ऐसी गिरावट मुझे पसंद नहीं है, ये रही लोक संगना। लोगों को राजी रखना है, आत्मा को राजी नहीं रखना है, लोगों को राजी रखना है। अरे तुम कितना भी करो ने अपयश कर्म का उदय आएगा, तुमको जूते ही पड़ने वाले हैं। चाहे तुम कितना भी निर्दोष हो सही हो, पूर्व में अपयश कर्म का मंदन निबंधन किया है, उसका उदय चालू है, और यश नाम वो नाम कर्म है, यश नाम कर्म या कीर्ति नाम कर्म का उदय होता है। कितना भी गड़बड़ करें नहीं, उल्टा करें तो भी लोग प्रशंसा करेंगे, वहां आप तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, आपकी तो क्या प्रशंसा करें। एक आदमी था, स्मगलिंग करता था, स्मगलिंग में पैसे बहुत मिलते हैं क्योंकि एक्साइज बचती है, एक्साइज बहुत बड़ी होती है, कभी 200% 300% एक्साइज का होता है। स्मगलिंग करता था तो कहीं भी 5,000 का दान देने, यश का कीर्ति का उदय बहुत अच्छा था, 5,000 का सिर्फ दान देवे कोई संस्था में तो वो संस्था क्या करे, इसका सम्मान समारण करें, क्या करें, सम्मान समारण, टेंट लगा करके, मंडप लगा करके उसको बुलाए, गले में माला लगाए और इसकी प्रशंसा का भाषण करें। नामी आदमी हो, लोग तो जानते हैं, आजकल ऐसा नहीं होता कि लोग नहीं जानते हैं कि पैसा कहाँ से आता है कैसे आता है, सब समझते हैं, फिर भी यश नाम कर्म का उदय होता है तो लोग उसका सम्मान समारंभ भी करते हैं। और उदय नहीं होता है, आदमी कितना भी प्रमाणिक हो, और प्रमाणिकता के खातिर, प्रमाणिकता के कारण से दरिद्रता को निभाता हो, लोग उनको भी जूता मारेंगे, उनको भी शंका की दृष्टि से देखेंगे, हो सकता है। तो लोगों की दृष्टि में ठीक रहना ये अपने हाथ की बात नहीं है, ये तो पूर्व के नाम कर्म के उदय अनुकूल होगा, ये अपने हाथ की बात नहीं है। अपने हाथ की बात उतनी है कि हमको दूषित परिणाम नहीं करना है, फिर लोगों को जो जानना हो जाने, समझना हो वो समझे, हमें कोई लेना देना नहीं। लोकसंज्ञा वाले को ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की कल्पना हो जाया करती है, यथार्थ रूप से उनको आत्मस्वरूप भावभाषण में आता नहीं है।
अगर अभिप्राय में ये बात रहता हो कि फिर भी हमारा बाल वास्तव ऐसा होना चाहिए जो दूसरों को विकल्प का कारण नहीं बने, यदि हमारा बाह्य ऐसा होना चाहिए कि जो दूसरों को विकल्प का कारण है, दूसरों को नुकसान का कारण नहीं बने, तो विवेक हमको लगता है।
लेकिन किसको भोग दे करके, वो सवाल है, किसका भोग दे करके सैक्रिफाइस किसको करोगे, आत्मकल्याण को सैक्रिफाइस करना है तो उचित नहीं है। आत्मकल्याण के बाजू को बराबर संभाल करके, उसको सुरक्षित रख करके फिर भाई में विवेक करो, पहला मूल विवेक तो रखो, मूल विवेक छोड़ करके बारे में विवेक करना चाहोगे वो विवेक कहाँ का है। मूल विवेक के प्रयास में रहो, साथ साथ बाह्य विवेक करो, तो ये बैलेंस बात है, ऐसी बात है। तो उसको लोक संज्ञा कहते हैं, लोक संज्ञा का प्रकरण जो है वो तो विशेष रूप से विचारणीय है मोक्ष जीव को। हाँ प्रश्न आया आया है, आत्म जागृति में कहते हैं सब प्रश्नों की चर्चा आती है। लोक संज्ञा का विषय थोड़ा विशेष रूप से प्रश्नोत्तर रूप में भी लेना, कि इसको लोक संज्ञा कहे क्या, इसको कहे क्या, इसको कहे क्या, इसको कहे, क्योंकि इसमें कभी भूलता है जीव और धोखा खा जाता है, इससे नुकसान तो अपने को होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ आया है उसमें से ले लेंगे, ठीक है, निकाल करके रखें, आज का समय हो गया है। हाँ तो थोड़ा उन तीन लोक संज्ञा, अवोक संज्ञा और असंज्ञा के विषय में विस्तार से उपाध्याय लेंगे।